नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल सहकारिता गांव स्थापित किया जाएगा। राज्य में होली मिलन समारोह की धूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने निजी आवास पर क्षेत्रवासियों के साथ होली की खुशियां बांटी। प्रदेश में 16 से 18 मार्च तक आपदा प्रबंधन की व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। लोक भवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आज समापन होगा और संयुक्त अरब अमीरात में ईरान के हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दुबई और अबूधाबी में रह रहे भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल सहकारिता गांव स्थापित किया जाएगा। देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इन गांवों में सहकारी बैंक, सीएससी सेंटर और सहकारी बाजार की स्थापना की जाएगी। डॉ. रावत ने कहा कि सहकारी बाजार महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और ग्रामीण उत्पादकों को विपणन का सशक्त मंच प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सहकारिता आधारित आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मॉडल सहकारिता गांव प्रदेश में सहकारिता के सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास का आधार बनेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सहकारी समितियों के 50 सचिवों को जल्द ही अध्ययन दौरे पर गुजरात भेजा जाए। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा स्थित अपने निजी आवास पर होली एवं पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया। समारोह में विभिन्न समुदाय की महिलाओं ने हिंदी, कुमाऊनी, थारू और बंगाली लोक परंपराओं पर आधारित होली गीतों तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। विभिन्न सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री भी होलियारों के साथ झूमते नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए समाज में प्रेम, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग की भावना को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया। देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित वसंतोत्सव के दूसरे दिन कल सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। कुमाऊनी लोक नृत्य चाचरी, जौनसारी लोक नृत्य हारुल, गढ़वाली लोक नृत्य बाजूबंद, थारू लोक नृत्य तथा कुमाऊनी होली नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इससे पहले सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दोपहर में केदार घाटी मंचन समिति की ओर से चक्रव्यूह नाटक की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनव और सशक्त संवादों के माध्यम से दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। इस अवसर पर पुष्प उत्पादकों और क्रेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन भी किया गया, जिससे पुष्प उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। वसंतोत्सव में कला, प्रकृति, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के विविध आयामों का समन्वय देखने को मिल रहा है, जो इसे जन सामान्य के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा है। आज प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संजीव कंडवाल।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आगामी 16, 17 और 18 मार्च को सभी जिलों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि निचले स्तर पर प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए यह अभ्यास तहसील स्तर पर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप आयोजित किया जाएगा, जिससे तैयारियों का समुचित मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से आपदा के समय त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता भी सुदृढ़ होगी। मॉकड्रिल के माध्यम से विभागीय समन्वय, राहत एवं बचाव दलों की त्वरित प्रतिक्रिया, उपलब्ध संसाधनों की स्थिति, संचार व्यवस्था और चेतावनी प्रणाली की भी जांच की जाएगी। अभ्यास के दौरान भूकंप, वनाग्नि, भूस्खलन, अग्निकांड, जलभराव, बाढ़ तथा मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी संभावित आपदाओं से निपटने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया जाएगा। अल्मोड़ा स्थित मैग्नेसाइट उद्योग को नैनीताल उच्च न्यायालय से 4 माह के लिए पुनः संचालन की अनुमति मिल गई है। इससे लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। लंबे समय से उद्योग बंद रहने के कारण इन लोगों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। अब उद्योग को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी संचालन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय ने उद्योग के पुनः संचालन पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के संरक्षण, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन और स्थानीय रोजगार सृजन की प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के दृष्टिगत चंपावत जिले की नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 72 घंटे के लिए सील रहेगी। इस दौरान दोनों ओर से किसी भी प्रकार के आवागमन में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतदान से ठीक 72 घंटे पूर्व सील कर दिया जाएगा। यह प्रतिबंध 3 मार्च की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा और मतदान की समाप्ति 5 मार्च तक लागू रहेगा।
नेपाल में 5 तारीख को इलेक्शन घोषित हुआ है। नेपाल की तरफ से 3 दिन के लिए कंप्लीट क्लोजर जो है वो किया गया है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब है उनकी सीमाएं जो है वो सील रहेंगी। तो उसके क्रम में यहाँ से भी मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इन 3 दिनों में जो आप परिवहन या और कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं उससे पहले कर लें या उसको बाद के लिए शेड्यूल कर लें। सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए और चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर जो है वो कंप्लीट सील रहेगा।
यूएई में ईरान के हमलों की खबर के बीच अबूधाबी में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। दुबई और अबूधाबी में रहने वाले भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर और सोशल मीडिया नंबर भी जारी किए गए हैं। वहीं सऊदी अरब में भी भारतीय दूतावासों ने एडवाइजरी जारी की है। रियाद में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनारक्षित टिकट प्रणाली UTS मोबाइल ऐप की सेवाएं आज से बंद कर दी जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सेवाएं नए रेल वन ऐप पर जारी रहेंगी और आर वॉलेट बैलेंस स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे रेल वन ऐप पर उसी मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें जो UTS मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया में महासंग्राम की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया। इस खबर पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान, इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों से मध्य पूर्व दहला। अमर उजाला लिखता है, अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला, 108 छात्राओं समेत 201 की मौत। चारधाम यात्रा पर अमर उजाला लिखता है, ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से नहीं लगेगा शुल्क। बार काउंसिल पर नवोदय टाइम्स की सुर्खी है, उत्तराखंड बार काउंसिल के 23 पदों पर परिणाम घोषित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल सहकारिता गांव स्थापित किया जाएगा। राज्य में होली मिलन समारोह की धूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने निजी आवास पर क्षेत्रवासियों के साथ होली की खुशियां बांटी। प्रदेश में 16 से 18 मार्च तक आपदा प्रबंधन की व्यापक मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। लोक भवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आज समापन होगा। और संयुक्त अरब अमीरात में ईरान के हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दुबई और अबूधाबी में रह रहे भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।